लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक संघर्षों की स्थिति में हम ध्रुवीकरण और लोक लुभावनवाद के खिलाफ संवाद और मैत्री के साहसी निर्माता बने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत विगत कुछ समय से हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित 150 भजनों के संग्रह यानी स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या करते रहे थे। स्तोत्र ग्रंथ के बाद बाइबल धर्म ग्रंथ में सूक्ति ग्रंथ को रखा गया है। यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। ईश्वर से मिले जीवन के वरदान को मनुष्य योग्य रीति से ग्रहण करे तथा अपने कल्याण के लिए प्रज्ञा और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करे, यही इस ग्रंथ का आग्रह है। सूक्ति ग्रंथ में सदाचार संबंधी सूक्तियां सम्मिलित हैं। इसमें प्रज्ञा, न्याय, धर्म, विनम्रता, ईमानदारी, प्रेम और धैर्य के वर्ण का मनुष्यों को परामर्श दिया गया है ताकि मनुष्य इन मूल्यों को आत्मसात कर अपने जीवन को सफल और साकार बना सके। मनुष्य यह याद रखे कि प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्व सृष्टा और सर्व पालक है, जिनकी आज्ञाओं का पालन कर मनुष्य सुखी और संपन्न बन सकता है। पुत्र, यदि पापी लोग तुमको लुभाना चाहें तो उनकी बात मत मानो। यदि वे कहें, आओ हमारे साथ चलो, हम घात लगाकर किसी का वध करें, हम अकारण किसी निर्दोष व्यक्ति की ताक में रहें, हम अधोलोक की तरह उन्हें जीवित ही निगल लें, कब्र में उतरने वालों की तरह उन्हें पूर्ण रूप से समाप्त करें, तो तुम उनकी बात मत मानो। श्रोताओं, ये था सूक्ति ग्रंथ के पहले अध्याय के 10वें, 11वें और 12वें पदों में निहित परामर्श। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने सूक्ति ग्रंथ के 10 से लेकर 19 तक के पदों की विस्तृत व्याख्या की थी। इन पदों में लेखक अपने पाठकों को कुसंग से सावधान रहने का परामर्श देता है। वह एक अभिभावक अथवा माता पिता की तरह बोलता है। वह पाठक को अपने बेटे के सदृश मानता और उससे आग्रह करता है कि वह माता पिता की सलाह को, उनकी सीख को कदापि न भुलाए, इसलिए कि माता पिता के पास ऐसी सीख होती है जो पुत्र पुत्रियों के सिर का मुकुट और उनके कंठ को सुशोभित करने वाली माला होती है। वे माता पिता द्वारा दिखाए मार्ग पर चलें ताकि दुष्टों के चंगुल में न पड़ें। इस तथ्य की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि सूक्ति ग्रंथ एक संक्षिप्त मिशन से शुरू होता है। इसका अस्तित्व लोगों को ज्ञान प्रदान करना है, उन्हें निर्देश देते रहना है ताकि वे हर प्रकार के प्रलोभन से बचे रहें और चतुराई के साथ न्याय और समानता पर आधारित अपना आचरण करें। लेखक सावधान करता है, कहता है कि यदि दुष्ट व्यक्ति यह कहे कि हमें सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएं मिल जाएंगी, हम लूट के माल से अपने घर भर लेंगे, हम में से एक बनो, हम सबकी एक ही पूंजी होगी, तो तुम उस दुष्ट पर विश्वास मत करो, क्योंकि झूठ बोलकर लुभाना उसका काम है। उन लोगों का साथ मत दो जिनके कदम बुराई की ओर बढ़ते हैं। 17 से 19 तक के पदों में लेखक कहता है, जब पक्षी देख रहे हों तो जाल बिछाना व्यर्थ है। ये लोग अपने ही लोगों का वध करते और अपने ही जीवन की घात में बैठते हैं। यह उन लोगों की गति है जो पाप की कमाई एकत्र करते, ऐसी कमाई जो मनुष्यों की जान ले लेती है। इस बात के प्रति हमने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कराया था कि सूक्ति ग्रंथ पाठकों को प्रज्ञा प्रदान करने के लक्ष्य से रचा गया था। प्रज्ञा का अर्थ केवल ज्ञान अथवा जानकारी का संचय नहीं है, अपितु प्रज्ञा एक ऐसा व्यावहारिक ज्ञान है जो ईश्वर पर श्रद्धा के इर्द गिर्द केंद्रित है, ताकि मनुष्य ईश्वर की कृपा और सुयश का पात्र बन सके। मनुष्य प्रभु ईश्वर द्वारा दिए गए नियमों का अनुपालन करे, क्योंकि ये नियम ही ज्ञान का मार्ग हैं, जिन पर अमल कर मनुष्य अवश्य ही सफल और धन्य हो सकता है।
रास्ता हूँ सत्य हूँ और मैं जीवन पूर्ण हूँ।
रास्ता हूँ सत्य हूँ और मैं जीवन पूर्ण।
और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के पहले अध्याय के दूसरे खंड पर दृष्टिपात करें। इसमें प्रज्ञा पुकार पुकार कर लोगों से सुनने का आग्रह करती है। वस्तुतः पहले अध्याय के 20 से लेकर 33 तक के पदों में लेखक प्रज्ञा को एक व्यक्ति के रूप में, विशेष रूप से एक महिला के रूप में देखता है, जो सड़कों से निकलती हुई पुकार पुकार कर मूर्खों और सामान्य लोगों से आग्रह करती है कि वे ज्ञान अर्जित करें। वह पूछती है कि कब तक वे अज्ञान के अंधेरे में डूबे रहेंगे, कब तक वे प्रकाश से छिपे रहेंगे। वह दावा करती है कि वह उन सब लोगों में ज्ञान के बीज प्रस्फुटित करेगी जो उस पर, यानी कि प्रज्ञा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जो उसकी बात मानेंगे, जबकि उन लोगों का तिरस्कार कर देगी जो उसका बहिष्कार करते हैं। प्रज्ञा कहती है कि यदि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और मनमानी करते गए तो उनका विनाश अवश्यंभावी है। यदि उन्होंने ईश्वर के नियमों के प्रति सम्मान का प्रदर्शन नहीं किया, ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखी, तो वे असफलता के गर्त में गिर पड़ेंगे। जबकि जो लोग प्रज्ञा की बात सुनकर उस पर अमल करेंगे, वे शांति में जीवन यापन के हकदार होंगे। श्रोताओ, सूक्ति ग्रंथ का लेखक पहले अध्याय के 20 से लेकर 23 तक के पदों में प्रज्ञा की पुकार को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। प्रज्ञा कहती है, प्रज्ञा सड़कों पर उच्च स्वर से पुकार रही है, उसकी आवाज चौकों में गूंज रही है, वह भीड़ भरी सड़कों पर पुकार लगा रही है, वह नगर के फाटकों पर अपना संदेश सुनाती है, कहती है, अज्ञानियों तुम कब तक मूर्खता पसंद करोगे, उपहासक कब तक उपहास करते रहोगे, मूर्ख कब तक ज्ञान से वैर करोगे, यदि तुम मेरी चेतावनी पर ध्यान दोगे तो मैं तुमको अपना आत्मा प्रदान करूंगी और तुम पर अपना संदेश प्रकट करूंगी। श्रोताओ, प्राचीन व्यवस्थान के सूक्ति ग्रंथ में निहित प्रज्ञा की विशिष्टता के बारे में यदि चर्चा की जाए तो हम पाते हैं कि प्रज्ञा जीवन यापन के सीधे सरल नियमों की प्रस्तावना करती है। बच्चों के साथ माता पिता और बच्चे माता पिता के साथ किस तरह का व्यवहार करें, किस प्रकार मनुष्य अनावश्यक झगड़ों को अपने जीवन से अलग रखे, शक्ति की प्रकृति कैसी है, परिश्रम का क्या महत्व है, इतिहास और राजनीति का उद्देश्य क्या है, आदि आदि प्रश्नों पर मनुष्यों को प्रज्ञा आलोक प्रदान करती है। तथापि यह कदापि न समझा जाए कि प्रज्ञा किसी दैवीय सत्य की प्रकाशना करती है। वस्तुतः वह किसी ईश्वरीय दृष्टिकोण से मानव की स्थिति को संबोधित नहीं करती, अपितु मानवीय आवश्यकताओं और मानव की उत्कंठा के आधार पर ही परामर्श देती है। यही कारण है कि सूक्ति ग्रंथ में हम कहीं भी प्रभु कहता है शब्द नहीं पाते। फिर भी प्रज्ञा विश्व में व्याप्त ईश्वरीय निकाय की रचना के विषय में बताकर इसे प्रतिबिंबित भी करती है, जबकि मूर्खता उस ईश्वरीय निकाय के प्रति अपनी आंखें मूंद लेती है, वह अंधी हो जाती है, उसमें हर भले कार्य में बाधा डालने का प्रभाव होता है। एक व्यक्तित्व के रूप में प्रज्ञा दिव्य है, वह श्रेष्ठ है। हमारे परिप्रेक्ष्यों और हमारे परंपराओं के जरिए प्रज्ञा अतीत में मूलबद्ध थी, वह वर्तमान में विद्यमान है और आदिकाल से ईश्वर के साथ है।
रासुता हूँ सत्य हूँ और मैं जीवन पूर्ण हूँ।
रासुता हूँ सत्य हूँ और मैं जीवन पूर्ण।
मेरे बिन कोई न जाए उस पिता के द्वार। सारी है इसी एक सत्य के आधार पर।
सृष्टि सारी है इसी एक सत्य के आधार पर।
मुझको जानो मुझको मानो
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। विगत रविवार को आतंकी ऑपरेशन उपरांत संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। उक्त बातें वैटिकन प्रेस प्रवक्ता मत्तेयो ब्रूनी ने संत पापा के स्वास्थ्य की ताजा जानकारी देते हुए गुरुवार को कही। ब्रूनी ने कहा, संत पापा फ्रांसिस ने शांति में अपने दिन बिताए। उन्होंने खाना खाया और बिना किसी की सहायता के स्वयं चहलकदमी की। दोपहर में वे निकट के पीडियाट्रिक अनाकोलॉजी और चाइल्ड न्यूरोसर्जरी वार्ड गए और छोटे बच्चों के साथ पितातुल्य स्नेह भरा सामीप्य साझा किया। उन्होंने अस्पताल के बच्चों का स्नेहपूर्ण अभिवादन किया। हालांकि बुधवार शाम को उन्हें हल्का बुखार था। गुरुवार की सुबह को उनका नियमित छाती पेट का सीटी स्कैन किया गया जो नकारात्मक निकला। वैटिकन प्रेस कार्यालय के निर्देशक ने कहा, संत पापा नियमित रूप से नियोजित उपचार और मौखिक भोजन ले रहे हैं। इस विशेष समय में वे बीमारों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त करते हैं। विशेष रूप से वे अपनी निगाहें उनकी ओर फेरते हैं जिन्हें अति जरूरत रूप से सहायता की आवश्यकता है। इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने प्रवासियों के लिए प्रार्थना का एक दिवस घोषित करते हुए ख्रिस्तियों को शांति और सभ्यता के शिक्षक बनने का आह्वान किया है। वर्ष 2021 के 5 महीने में बेहतर जीवन की चाह में यूरोप की ओर पलायन करने वाले करीबन 6030 नर नारियों और बच्चों की मृत्यु भूमध्य सागर में डूबने से हुई है। प्रवासन हेतु गठित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अनुसार मरने वालों की संख्या 632 दर्ज की गई है। इटली के धर्माध्यक्षों ने कहा, इस प्रकार की त्रासदियां हमारी अंतरात्मा को झकझोर देती और हम मांग करते हैं कि हम प्रवासन की घटना को खुली आंखों से देखें। इतालवी धर्माध्यक्षीय सम्मेलन ने भले मानस लोगों को इस बात के लिए भी निमंत्रण दिया है कि वे 11 जुलाई को प्रवासियों, विशेषकर गरीबी, युद्ध, सतावट और जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन कर रहे लोगों की यादगारी में आयोजित की गई प्रार्थना में सहभागी हों, जो भूमध्य सागर में डूबकर मर गए। संत पापा फ्रांसिस ने संत बेनेडिक्ट के पर्व दिवस में, जो यूरोप के संरक्षक संत हैं, इस दिन को निर्धारित किया है। इस दिन में सभी पल्लियों को विशेष रूप से प्रवासियों के लिए निवेदन अर्पित करने का आह्वान किया गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो अच्छे भविष्य की आशा में समुद्री यात्रा करते हुए जलमग्न हो गए। 13 जून को संत पापा द्वारा की गई अपील की याद करते हुए इतालवी धर्माध्यक्षकों ने इस बात को दोहराते हुए विश्वासियों को प्रवासियों के लिए अपने हृदय खोलने का आह्वान किया। भूमध्य सागरीय प्रांत यूरोप का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया है। उन्होंने कैथोलिक समुदायों को निमंत्रण दिया कि वे उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने यूरोपीय सीमाओं तक पहुँचने की कोशिश करते हुए अपने जीवन को खो दिया है। उधर कैथोलिक शिक्षा सम्मेलन और संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्रालय के बीच एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। पिछले सोमवार को संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री और कैथोलिक शिक्षण हेतु गठित परम धर्म पीठ सम्मेलन के अधिकारी कार्डिनल जुसेप्पे वेरसाल्दी ने विश्व में सहिष्णुता, सह अस्तित्व और मानव भाईचारे को बढ़ावा देने हेतु एक सहयोगी समझौते पर हस्ताक्षर किए। विश्व शांति और सह अस्तित्व हेतु भ्रातृत्व पर एक दस्तावेज, जो 2 साल पूर्व अबू धाबी में संत पापा और ग्रैंड इमाम अल अजहर अहमद अल तैयब के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर फलप्रद हो रहे हैं। कार्डिनल वेरसाल्दी ने कहा कि इस संबंध में शेख नाहयान बिन मुबारक अल नाहयान, सहिष्णुता और सह अस्तित्व विभाग के मंत्री ने संत पापा की पहल हेतु कृतज्ञता के भाव प्रकट किए हैं। उन्होंने कहा, हमारे छात्रगण और अरब विद्यालयों के विद्यार्थी ठोस रूप में आपसी विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए एक साथ मिलकर सेमिनारों में सहभागी हो सकेंगे। बिना किसी धर्म परिवर्तन के वे सामान्य मूल्यों के आधार पर एक दूसरे के संस्थानों की भेंट कर सकेंगे। 21 जून से 13 जुलाई तक जेनेवा में चल रहे 47वें मानव अधिकार संघ के संगोष्ठी में लिंग, नारी, शिक्षा का अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय एकता और डिजिटल माध्यमों में गोपनीय विषयों पर चर्चा करते हुए कहा गया कि नारियों के प्रति हिंसा असहनीय है। नारियों के विरुद्ध किसी तरह की हिंसा और उनके संबंध में चुप्पी और उदासीनता अपने में असहनीय है। उधर हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोसे की रातोंरात उनके निजी आवास में हत्या कर दी गई। गोलीबारी में उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। हमले में घायल हुई प्रथम महिला मार्टिन मोसे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति खतरे से खाली बतलाई गई है। संत पापा फ्रांसिस ने हैती के राष्ट्रपति की हत्या पर शोक प्रकट करते हुए उनके नाम शोक संदेश प्रेषित किया। संत पापा के नाम हैती के प्रेरितिक राजदूत को प्रेषित अपने सांत्वना के संदेश में वैटिकन सचिव कार्डिनल पियेत्रो पारोलिन ने लिखा, हैती के राष्ट्रपति महामहिम जोवेनेल मोसे की जघन्य हत्या की खबर सुनकर संत पापा मर्माहत हैं। वे हैती देशवासियों और गंभीर रूप से घायल उनकी पत्नी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। वे घायलों को ईश्वर के हाथों में अर्पित करते हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।